नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। एक और पोत नंदा देवी कल पहुंचेगा। नाटो से हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को सदस्य देशों ने खारिज किया। इसराइल द्वारा दक्षिणी लबनान में जमीनी अभियान के विस्तार से पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज। ईरान ने युद्ध विराम के आह्वान को अस्वीकार किया। अफगानिस्तान ने दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर ड्रोन हमला किया। और ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष और तन्वी कल भारत का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में घटनाक्रमों के बीच भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी वाहक शिवालिक द्वारा माल उतारने में कोई देरी न हो, इसके लिए बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण और प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग की व्यवस्था की गई। उन्होंने ये भी बताया कि एलपीजी लेकर आ रहा एक अन्य भारतीय पोत नंदा देवी कल यहां पहुंच जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि पोत जग लाडकी कल सुरक्षित स्वदेश पहुंच रहा है।
इंडियन फ्लैग वेसल जग लाड़की,
भारतीय ध्वजवाहक जहाज जग लाड़की, जो 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था, लगभग 81,000 टन मुरबान कच्चे तेल के साथ भारत की ओर सुरक्षित यात्रा कर रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह कल मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा।
टुमारो एट मुंद्रा पोर्ट।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ईरान से लौट रहे नागरिकों की जानकारी दी है।
We also have had 90 of our nationals.
ईरान से लगभग 90 भारतीय नागरिक सीमा के रास्ते अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने उन्हें वीजा और अन्य औपचारिकताओं में सहयोग किया। ईरान से आर्मेनिया में प्रवेश करने वाले 550 लोगों के समूह में 284 लोग तीर्थ यात्रा के लिए ईरान गए थे। इनमें से कुछ लोग लौट चुके हैं और अन्य अगले कुछ दिनों में लौट आएंगे। कई मुश्किलों के बावजूद तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह से कार्यरत है।
कंटिन्यूज टू बी फुली फंक्शनल।
विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक खाड़ी क्षेत्र से लगभग 2,20,000 यात्री स्वदेश लौट चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके समर्थन की सराहना भी की। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो से हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करने के आह्वान को ब्रिटेन और जर्मनी ने खारिज कर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि ये नाटो का मिशन नहीं है। एक रिपोर्ट।
हॉर्मूज जल डमरू मध्य को ईरान ने संघर्ष के दौरान अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के यातायात के लिए बंद कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो से इस जलमार्ग को फिर से खोलने में सहायता का आह्वान किया और कहा कि यदि सदस्य देश इससे इनकार करते हैं तो नाटो का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की योजना पर सहयोगियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग को खोलने के लिए युद्ध पोत भेजने की मांग की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री स्टारमर की आलोचना की है कि उन्होंने कथित तौर पर युद्ध का समर्थन नहीं किया। इस बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष का नाटो से कोई लेना देना नहीं है और ये नाटो का युद्ध नहीं है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की बैठक से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भी कहा नाटो को हॉर्मूज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाटो ने कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही वह इस मुद्दे के लिए जिम्मेदार है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
पश्चिम एशिया में पिछले कुछ घंटों के दौरान संघर्ष और बढ़ गया है। इसराइल ने दक्षिणी लबनान में जमीनी अभियानों का विस्तार करने की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट।
इसराइल की सेनाएं हिजबुल्ला ठिकानों को नष्ट करने के लिए लिटानी नदी की पश्चिम की ओर बढ़ी है। इसराइल के अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के विस्थापितों को तब तक वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उत्तरी इसराइल की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है। लेबनान में मानवीय स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। सहायता एजेंसियों का अनुमान है कि अब तक 8.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ब्रिटेन ने लड़ाई से प्रभावित लोगों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए आपातकालीन सहायता के रूप में अतिरिक्त 5 मिलियन पाउंड की घोषणा की है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वे युद्ध विराम नहीं चाहता और इसराइली हमलों पर जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई में फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रीज जोन पर आज सुबह हुए ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए आपातकालीन दल जुटे हुए हैं। यह हमला दुबई और आबूधाबी के ऊपर ड्रोन द्वारा रोके जाने की खबरों के साथ हुआ। इससे कुछ ईंधन और विमानन संचालन कुछ समय के लिए बाधित हुआ। कतर एयरवेज ने घोषणा की है कि वह 18 से 28 मार्च तक संशोधित और सीमित संख्या में उड़ानों का परिचालन करेगा। कतर में भारतीय दूतावास ने कहा कि ये एयरलाइन दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, कोझिकोड और मुंबई सहित भारतीय शहरों के लिए उड़ान का परिचालन करेंगी। एयरलाइन ने यात्रियों को आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर उड़ान संबंधी ताजा जानकारी तथा उनके अद्यतन यानी अपडेट संपर्क विवरण की जांच करने की सलाह दी है। इस बीच ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व और स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। दूतावास ने कहा कि दूतावास की जानकारी और मार्गदर्शन के बिना सीमाओं के माध्यम से ईरान छोड़ने का प्रयास करने वाले भारतीय नागरिकों को गंभीर रसद और आवर्जन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर ड्रोन हमला किया है। यह हमला इस्लामाबाद द्वारा कंधार प्रांत में रात भर किए गए हवाई हमलों के जवाब में किया गया। हमले में स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने रात भर अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हवाई हमले किए थे। भारत और नॉर्डिक देशों ने आज भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और भारत EFTA TEPA मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में नॉर्डिक देशों के राजदूतों के साथ चर्चा में संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। इसमें व्यापार और निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्वांटम तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, आर्कटिक और अंतरिक्ष जैसे मुद्दे शामिल थे। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता कल से 22 मार्च तक फ्रांस में खेली जाएगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में किदांबी श्रीकांत का सामना मैग्नस जोहानसेन से और आयुष शेट्टी ली चिया हाउ से भिड़ेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा का सामना सुपनीदा कटेथोंग से होगा। HS प्रणय कंधे की चोट के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन LPG लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। एक और पोत नंदा देवी कल पहुंचेगा। नाटो से हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को सदस्य देशों ने खारिज किया। इसराइल द्वारा दक्षिणी लबनान में जमीनी अभियान के विस्तार से पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज। ईरान ने युद्ध विराम के आह्वान को अस्वीकार किया। अफगानिस्तान ने दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर ड्रोन हमला किया। और ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष और तन्वी कल भारत का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।